कोसी का घटवार शेखर जोशी। गुसाई का मन चिलम में भी नहीं लगा। मिहल की छांह से उठकर वह फिर एक बार घट पंचक्की के अंदर गया। अभी खपर में एक चौथाई से भी अधिक गेहूं शेष था। खपर में हाथ डालकर उसने व्यर्थ उल्टा पलटा और चक्की के पाटों में वृत्त में फैले हुए आटे को झाड़कर एक ढेर बना दिया। बाहर आते आते उसने फिर एक बार और खपर में झांक कर देखा, जैसे यह जानने के लिए कि कितनी देर में कितनी पिसाई हो चुकी है। परंतु अंदर की मिकदार में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। खसखस की ध्वनि के साथ अत्यंत धीमी गति से ऊपर का पाट चल रहा था। घट का प्रवेश द्वार बहुत कम ऊंचा था। खूब नीचे तक झुककर वह बाहर निकला। सर के बाल और बाहों पर आटे की हल्की सफ़ेद परत बैठ गई थी। खंभे का सहारा लेकर वह बुदबुदाया, जा साला, सुबह से अब तक 10 पसेरी भी नहीं हुआ। सूरज कहाँ का कहाँ चला गया है। कैसी अनहोनी बात अनहोनी तो है ही। जेठ बीत रहा है, आकाश में कहीं बादल का नाम निशान ही नहीं। अन्य वर्षों अब तक लोगों की धान परोई पूरी हो जाती थी, पर इस साल नदी नाले सब सूखे पड़े हैं। खेतों की सिंचाई तो दरकिनार, बीज की क्यारियाँ सूखी जा रही हैं। छोटे नाले गुलों के किनारे के घट महीने से बंद हैं। कोसी के किनारे है गुसाई का यह घट, पर इसकी भी चाल एक ऐसी कि लद्दू घोड़े की चाल को मात देती है। चक्की के नीचे खंड में छछिर छछिर की आवाज़ के साथ पानी को काटती हुई मथानी चल रही थी। कितनी धीमी आवाज़। अच्छे खाते पीते ग्वाले के घर में दही की मथानी इतने ज़्यादा शोर करती है। इस मथानी का वह शोर होता था कि आदमी को अपनी बात नहीं सुनाई देती थी, और अब दो भले नदी पार कोई बोले तो यह बात नहीं सुनाई दे जाए। छप 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 पुरानी फौजी पैंट की घुटनों तक मोड़कर गुसाई पानी की गुल के बाहर अंदर चलने लगा। कहीं कोई सुराख निकास हो तो बंद कर दे, एक बूंद पानी भी बाहर न जाए। बूंद बूंद की कीमत है इन दिनों। प्रायः आधा फरलांग चलकर वह बांध पर पहुंचा। नदी की पूरी चौड़ाई को घेर कर पानी का बहाव कट घट की गुल की ओर मोड़ दिया गया था। किनारे की मिट्टी घास लेकर उसने बांध में एक दो स्थान पर निकास बंद किया और फिर गुल के किनारे किनारे चलकर घट के पास आ गया। अंदर जाकर उसने फिर पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को बुहार कर ढेरी में मिला दिया। खप्पर में अभी थोड़ी बहुत शेष गेहूं था। वह उठकर बाहर आया। दूर रास्ते पर एक आदमी सर पिसान रखे उसकी ओर आ रहा था। गुसाई ने उसकी सुविधा का ख्याल कर वहीं से आवाज़ दे दी, हाँ हो यहाँ लंबर देर में आएगा, दो दिन का पिसान अभी जमा है, ऊपर उमेद सिंह के घाट में देख लो। उस व्यक्ति ने मुड़ने से पहले एक बार और प्रयत्न किया। खूब ऊंचे स्वर में पुकार कर वह बोला, जरूरी है जो पहले हमारा लंबर नहीं लगा देगोए। गुसाई होठों ही होठ में मुस्कुराया, कैसे चीखता है, जैसे घट की आवाज़ इतनी हो कि मैं सुन न सकूं। कुछ ऊंची आवाज़ में उसने हाथ हिलाकर उत्तर दे दिया, यहाँ जरूरी काफी बाप रखा है जी, तुम ऊपर चले जाओ। वह आदमी लौट गया। मिहल की छांव में बैठकर गुसाई ने लकड़ी के जलते कुंदे को खोदकर चिलम सुलगाई और गुड़गुड़ करता हुआ धुआं उड़ाता रहा। खसर खसर चक्की की पाट चल रही थी। कितकित कितकित खप्पर से दाने गिराने वाली चिड़िया पाट पर टकरा रही थी। छिछिर छिछिर की आवाज के साथ मथानी पानी को काट रही थी। और कहीं कोई आवाज नहीं। कोसी के बहाव में भी कोई ध्वनि नहीं हुई। रेती पाथरों के बीच खटखट टकने तक फैले पानी क्या आवाज करेगा। पानी के गर्भ से निकलकर छोटे छोटे पत्थर भी अपना सर उठाए आकाश को निहार रहे थे। दोपहरी ढलने पर भी इतनी तेज धूप, कहीं चिड़ियां भी नहीं बोलती, किसी प्राणी का प्रिय अप्रिय स्वर नहीं। सूखा नदी के किनारे बैठा गुसाई सोचने लगा, क्यों उस व्यक्ति को लौटा दिया। लौट तो वह जाता ही घट के अंदर टच पड़े पिसान के थैली को देखकर दो चार क्षण की बातचीत का आसरा ही होता। कभी कभी गुसाई को यह अकेलापन काटने लगता। सूखी नदी के किनारे का यह अकेलापन जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया, वही जिसे अपना कह सके। ऐसे किसी प्राणी का स्वर उसके लिए नहीं, पालतू कुत्ते बिल्ली का स्वर भी नहीं, क्या ठिकाना ऐसे मालिक का जिसका घर द्वार नहीं, बीवी बच्चे नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं। घुटने तक उठी हुई पुरानी फौजी पेंट के मोड़ को गुसाई ने खोला। गुल में चलते हुए थोड़ा भाग भीग गया था, पर इस गर्मी में उसे भीगी पैंट की यह शीतलता अच्छी लगी। पैंट की सलवटों को ठीक करते हुए गुसाई ने हुक्के की नली से मुंह उठ हटाया। उसके होठों में बाएं कोने पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। बीती बातों की याद गुसाई सोचने लगी, इसी पैंट की बदौलत यह अकेलापन उसे मिला है, नहीं याद करने पर मन नहीं करता। पुरानी, बहुत पुरानी बातें भूल गया है, पर हवादार की पैंट की बात उसे नहीं भूलती। ऐसी ही फौजी पैंट पहनकर हवलदार धर्म सिंह आया था। लॉन्ड्री की धूली, नोकदार क्रीज वाली पैंट, वैसा ही पैंट पहनने का महत्वाकांक्षा लेकर गुसाई फौज में आ गया था। पर फौज से लौटा तो पैंट के साथ जिंदगी का अकेलापन भी उसके साथ आ गया। पैंट के साथ और कितनी स्मृतियां संबंध हैं। उस बार की छुट्टियों की बात, कौन महीना, हाँ बैसाख ही था। सर पर क्रास सुकरी के क्रेस्ट वाली काली सिनुमा टोपी को तिरछा रखकर फौजी वर्दी पहने वह पहली बार इनुअल लीव पर घर आया तो चीड़ बन की आग की तरह खबर फैल गई थी। बच्चे बूढ़े सभी उनसे मिलने आए थे। चाचा का गोठ एकदम भर गया था ठसाठस। बिस्तर की नई एकदम साफ जगमग लाल नीली धारियों वाली दरी आंगन में बिछानी पड़ी थी लोगों को बिठाने के लिए। खूब याद है, आंगन का गोबर दरी में लग गया था। बच्चे बूढ़े सभी आए थे। सिर्फ चना गुड़ या हल्द्वानी के तंबाकू का लोभ ही नहीं था, कल के शर्मिले गुसाई को इस नए रूप में देखने का कौतूहल भी था। पर गुसाई की आंखें उस भीड़ में जिसे खोज रही थी वह नहीं थी। नाले पार अपने गांव में भैंस के कटिया को खोजने के बहाने दूसरे दिन लक्ष्मा आई थी, पर गुसाई उस दिन उससे मिल न सका। गांव के छोकरे ही गुसाई की जान को बवाले हो गए थे। बूढ़े नरसिंह प्रधान उन दिनों ठीक ही कहते थे। आजकल गुसाई को देखकर सुमनिया का लड़का अपनी फटी घेर की टोपी तिरछी पहनने लग गया था। दिन रात बिल्ली के बच्चों की तरह छोकरे उसके पीछे लगे रहते थे, सिगरेट बीड़ी या गपशप के लोभ में। एक दिन बड़ी मुश्किल से मौका मिला था उसे। लक्ष्मा को पात पतले के लिए जंगल जाते देख वह छोकरे से कांकड़ के शिकार का बहाना बनाकर अकेले जंगल को चल दिया था। गांव की सीमा से बहुत दूर काफल के पेड़ के नीचे गुसाई के घुटने पर सर रखकर लेटी लेटी लक्ष्मा काफल खा रही थी। पक्के गदराए गहरे लाल काफल। खेल खेलों में काफल का छीना छपटी करते गुसाई ने लक्ष्मा की मुट्ठी भींच दी थी। टप टप काफलों का गाढ़ा रस उसकी पैंट पर गिर गया था। लक्ष्मा ने कहा था, इसे यहीं रख जाना, मेरी पूरी बांह की कुर्ती इसमें से निकल आएगी। वह खिलखिलाकर अपनी बात पर स्वयं ही हंस दी थी। पुरानी बात, क्या कहा जाए, गुसाई ने याद नहीं पड़ता। तेरे लिए मखमल की कुर्ती ला दूंगा मेरी सुबह, या कुछ ऐसी ही। पर लक्ष्मा को मखमल की कुर्ती किसने पहनानी होगी। पहाड़ी पार के रमुआ ने जो तूरी निशान लेकर उससे ब्याहने आया था, जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दे हम, लक्ष्मा के बाप ने कहा था। उसका मन जानने के लिए गुसाई ने टेढ़े तिरछे बात चलवाई थी। उसी साल मंगसिर की एक ठंडी उदास शाम को गुसाई की यूनिट के सिपाही किशन सिंह ने क्वार्टर मास्टर स्टोर के सामने बड़े खड़े खड़े उससे कहा था, हमारे गांव के राम सिंह ने जीत की, तभी छुट्टियां बढ़ानी पड़ी। इस साल उसकी शादी थी। खूब अच्छी औरत मिली है यार, शक्ल सूरत भी खूब है, एकदम पटाका, बड़ी हंसमुख है, तुमने तो देखा ही होगा, तुम्हारे गांव के नजदीक की है, लक्ष्मा लक्ष्मा कुछ ऐसा ही नाम है। गुसाई को याद नहीं पड़ता कौन सा बहाना बनाकर वह किशन सिंह के पास चला आया था। रम डे था उस दिन। हमेशा आधा पैग लेने वाला गुसाई उस दिन दो पैग रम लेकर अपनी चरपाई पर पड़ गया था। हवलदार मेजर ने दूसरे दिन पेशी करवाई थी मलेरिया प्रिकॉशन न करके अपराध में। सोचते सोचते गुसाई बुदबुदाया, साला एडजुटेंट। गुसाई सोचने लगा, उस साल छुट्टियों में घर से विदा होने से एक दिन पहले वह मौका निकाल कर लक्ष्मा से मिला था। गंगनाथ जू की कसम, जैसे तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मा ने कहा था। वर्षों से वह सोचता आया है कहीं लक्ष्मा से भेंट होगी तो वह अवश्य कहेगा कि वह गंगनाथ का जागर लगाकर प्रायश्चित जरूर कर ले। देवी देवताओं की झूठी कसमें खाकर उन्हें नाराज करने से क्या लाभ। जिस पर भी गंगनाथ का कोप हुआ वह कभी फल फूल नहीं सका। पर लक्ष्मा से कब भेंट होगी यह वह नहीं जानता। लड़कपन के संगी साथी नौकरी चाकरी के लिए मैदान में चले गए। साथी गांव की ओर जाने का उसका मन नहीं होता। लक्ष्मा के बारे में किसी से पूछना उसे अच्छा नहीं लगता। जितने दिन नौकरी रही वह पलटकर अपने गांव नहीं आया। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का वॉलेंटरी ट्रांसफर लेने वाले की लिस्ट में नायक गुसाई सिंह का नाम ऊपर आता रहा लगातार 15 साल तक। पिछले बैसाख में ही वह गाँव लौटा। 15 साल बाद रिजर्व में आने पर काले बालों को लेकर गया था, खिचड़ी बाल लेकर लौटा। लक्ष्मा का हट उसे अकेला बना गया। आज इस अकेलेपन में कोई होता जिसे गुसाई अपनी जिंदगी किताब पढ़कर सुनाता। शब्द शब्द अक्षर अक्षर कितना देखा कितना सुना कितना अनुभव किया है उसने। पर नदी किनारे यह तपती रेत, पंचक्की की खटर पटर और हिमालय की छाया और मीहल की छाया में ठंडी चीलम को निष्प्रयोजन गुड़गुड़ाता गुसाई और चारों ओर अन्य कोई नहीं, एकदम निर्जन निशब्द सुनसान। एकाएक गुसाई का ध्यान टूटा। सामने पहाड़ी के बीच की पगडंडी से सर पर बोझा लिए एक नारी आकृति उसी ओर चली आ रही थी। गुसाई ने सोचा वही से आवाज़ देकर उसे लौटा दे। कोसी के चिकने काई लगे पत्थरों पर कठिनाई से चलकर उसे वहां तक आकर केवल निराशा लौट जाने को क्यों वह बाध्य करे। दूर से चिल्ला चिल्लाकर पिसान स्वीकार करवाने की लोगों की आदत के कारण वह तंग आ चुका था। इस कारण आवाज़ देने को उसका मन नहीं हुआ। वह आकृति अब तक पगडंडी छोड़कर नदी के मार्ग में आ पहुंची थी। चक्की की बदलती आवाज़ को पहचान कर गुसाई घट के अंदर चला गया। खपर खपर का अनाज समाप्त हो चुका था। खपर में एक कम अन्न वाले थैले को उलटकर उसने अन्न का निकास रोकने के लिए काठ की चिड़िया को उल्टा कर दिया। किटकिट का स्वर बंद हो गया। वह जल्दी जल्दी आटे को थैले में भरने लगा। घट के अंदर मथानी की छछिर छछिर की आवाज़ थी, अपेक्षाकृत कम सुनाई दे रही थी। केवल चक्की के ही ऊपर वाले पाट की घिसती हुई घरघराहट का हल्का हल्का धीमा संगीत चल रहा था। तभी गुसाई ने सुना अपनी पीठ के पीछे घट के द्वार पर इस संगीत से भी मधुर एक नारी का कंठ स्वर। कब बारी आएगी जी, रात की रोटी के लिए घर में आटा नहीं, सर पर पिसान रखे एक स्त्री उससे यह पूछ रही थी। गुसाई को उसका स्वर परिचित सा लगा। चौंक कर उसने पीछे मुड़कर देखा। कपड़े में पिसान ढीला बंधा होने के कारण बोझ का एक सिरा उसके मुख के आगे आ गया था। गुसाई उसे ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन तब भी उसका मन जैसे आशंकित हो उठा। अपनी शंका का समाधान करने के लिए वह बाहर आने को मुड़ा, लेकिन तभी फिर अंदर जाकर पिसान के थैले को इधर उधर रखने लगा। काठ की चिड़िया किटकिट बोल रही थी और उसी गति के साथ गुसाई को अपने हृदय की धड़कन का आभास हो रहा था। घट के छोटे कमरे में चारों ओर पिसे हुए अन्न का चूर्ण फैला रहा था, जो अब तक गुसाई के पूरे शरीर पर छा गया था। इस कृत्रिम सफेदी के कारण वह वृद्ध सा दिखाई दे रहा था। स्त्री ने उसे नहीं पहचाना था। उसने दोबारा यही शब्द दोहराए। वह अब भी तेज धूप में बोझा सर पर रखे हुए गुसाई का उत्तर पाने को आतुर थी। शायद नकारात्मक उत्तर मिलने पर वह उल्टे पांव लौटकर किसी अन्य चक्की का सहारा लेती। दूसरी बार के प्रश्न को गुसाई न टल पाया, उत्तर देना ही पड़ा। यहाँ पहले ही टीला लगा है, देर तो होगी ही, उसने दबे दबे स्वर में कह दिया। स्त्री ने किसी प्रकार की अनुनय बिनय नहीं की। शाम के आटे का प्रबंध करने के लिए वह दूसरी चक्की का सहारा लेने के लिए लौट पड़ी। गुसाई कमर झुकाकर घट के बाहर निकला। मुड़ते हुए स्त्री की एक झलक देखकर उसका संदेह विश्वास में बदल गया था। हताश सवा कुछ क्षण तक उसे जाते हुए देखता रहा और फिर अपने हाथों पर सिर पर गिरे हुए आटे को झाड़कर वह दो कदम आगे बढ़ा। उसके अंदर की किसी अज्ञात शक्ति ने उसे वापस जाती हुई उस स्त्री को बुलाने को बाध्य कर दिया। आवाज़ देकर उसे बुलाने को उसके मुंह खोला, परंतु आवाज़ न दे सका। एक झिझक एक असमर्थता थी, उसने मुंह बंद कर रही थी। वह स्त्री नदी तक पहुंच चुकी थी। गुसाई के अंतर तीव्र उथल पुथल मच गई। इस बार आवेग इतना तीव्र था कि वह स्वयं को रोक नहीं पाया। लड़खड़ाती आवाज़ में उसने पुकारा, लक्ष्मा। घबराहट के कारण वह पूर जोर से आवाज़ नहीं दे पाया था। स्त्री ने यह आवाज़ नहीं सुनी। इस बार गुसाई ने स्वस्थ होकर पुनः पुकारा, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने पीछे मुड़कर देखा। मायके में उसे सभी इसी नाम से पुकारते थे। यह संबोधन उसके लिए स्वाभाविक था, परंतु उसे शंका शायद यह कह कि चक्की वाला एक बार पिसान स्वीकार न करके यह दोबारा उसे बुला रहा है, उसे केवल भ्रम हुआ है। उसने वहीं से पूछा, मुझे पुकार रहे हैं जी? गुसाई ने स्वयं से स्वर में कहा, हाँ ले आ, हो जाएगा। लक्ष्मा क्षण भर रुकी और फिर घट की ओर लौट आई। अचानक साक्षात्कार होने का मौका न देने की इच्छा से गुसाई व्यस्तता का प्रदर्शन करता हुआ मिहल की छांह में चला आया। लक्ष्मा ने पिसान का थैला घट के अंदर रखाई। बाहर निकलकर उसने आंचल के कोर से मुंह पोछा। तेज धूप के चलने के कारण उसका मुंह लाल हो गया था। किसी पेड़ की छाया में विश्राम करने की इच्छा से इधर उधर देखा। मिहल के पेड़ की छाया में घट की ओर पीठ किए गुसाई बैठा हुआ था। निकट स्थान में दाड़िम के एक पेड़ की छाह को छोड़कर अन्य कोई बैठने स्थान लायक नहीं थी। वह उसी ओर चलने लगी। गुसाई की उदारता के कारण श्रीनी होकर उसने जैसे ही उसके निकट आते आते कहा, तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहें घटवार जी, बड़ा उपकार का काम कर दिए तुमने। ऊपर के घाट में जाने कितनी देर में लंबर आदमी मिलता। अजात संतति के प्रति दिए गए आशीर्वचनों को गुसाई ने मन ही मन विनोद के रूप में ग्रहण किया। इसी कारण उसकी मानसिक उथल पुथल कुछ कम हो गई। लक्ष्मा उसकी ओर देखे इससे पूर्व उसने कहा, जीते रहें तेरे बाल बच्चे लक्ष्मा, मायके कब आई? गुसाई ने अंतर में घुमरते हुए आंधी को रोक कर यह प्रश्न इतने संयत स्वर में किया जैसे वह भी अन्य 10 आदमियों की तरह लक्ष्मा के लिए एक साधारण व्यक्ति हो। दाड़िम की छाया में पात पतेल झाड़ कर बैठते ही लक्ष्मा ने संकित दृष्टि से गुसाई की ओर देखा। कोसी की सूखी धार अचानक जल प्लावित होकर बहने लगी तो भी लक्ष्मा को इतना आश्चर्य नहीं होता जितना अपने स्थान से केवल 4 कदम की दूरी पर गुसाई को इस रूप में देखते हुए हुआ। इसमें से आँख फाड़कर उसे देखे जा रही थी। जैसे अब भी उसे विश्वास न हो रहा था, जो व्यक्ति उसके सम्मुख बैठा है वह उसका पूर्व परिचित गुसाई ही है। तुम जाने लक्ष्मा क्या कहना चाहती थी, शेष शब्द उसके कंठ में ही रह गए। हाँ, पिछले साल पलटन से लौट आया था, वक्त काटने के लिए घाट लगा लिया, गुसाई ने उसकी जिज्ञासा शांत करने के लिए कहा। होंठों पर मुस्कान लाने की उसने असफल कोशिश की। कुछ क्षणों तक दोनों कुछ नहीं बोले, फिर गुसाई ने ही पूछा, बाल बच्चे ठीक हैं? आंखें जमीन पर टिकाए गर्दन हिलाकर संकेत से ही उसने बच्चों की कुशलता की सूचना दे दी। जमीन पर गिरे एक दाड़िम के फूल को हाथ में लेकर लक्ष्मा उसकी पंखुड़ियों को एक एक करके निर्देश से तोड़ने लगी और गुसाई पतली सीक लेकर आग को कुरेदता रहा। बातों का क्रम बनाए ही गुसाई ने पूछा, तू अभी और कितने दिन मायके ठहरने वाली है? अब लक्ष्मा के लिए अपने को रोकना असंभव हो गया। टप टप वह सर नीचा किए आंसू गिराने लगी। सिसकियों के साथ उसके उठते गिरते कंधों को गुसाई देखता रहा। उसे यह नहीं सूझ रहा था कि वह किन शब्दों में अपनी सहानुभूति प्रकट करे। इतनी देर बाद सहसा गुसाई का ध्यान लक्ष्मा के शरीर की ओर गया। उसके गले में काला चिरेऊ सुहाग चिन्ह नहीं था। हथप्रभ सा गुसाई उसे देखता रहा। अपनी व्यवहारिक अज्ञानता पर उसे बेहद झुंझलाहट हो रही थी। आज अचानक लक्ष्मा से भेंट हो जाने पर वह उन सब बातों को भूल गया जिन्हें वह कहना चाहता था। इन क्षणों में वह केवल मात्र श्रोता बनकर ही रह जाना चाहता था। गुसाई की सहानुभूति पूर्ण दृष्टि पाकर लक्ष्मा आंसू पोंछती हुई अपना दुखड़ा रोने लगी। जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता। जेठ जेठानी से किसी तरह पिंड छुड़ाकर यहाँ माँ की बीमारी में आई थी, वह भी मुझे छोड़कर चली गई। एक अभागा मुझे रोने को रह गया है, उसके लिए जीना पड़ रहा है, नहीं तो पेट पर पत्थर बांधकर कहीं डूब मरती, जंजाल काटता। यहाँ काका काकी के साथ रह रही हो? गुसाई ने पूछा। मुश्किल पड़े रहने पर किसी का नहीं होता जी, बाबा की जायदाद पर उनकी आंखें लगी हैं, सोचते हैं कहीं मैं हक जमा लूँ। मैंने साफ साफ कह दिया है मुझे किसी का कुछ लेना देना नहीं। जंगलात का लीसा ढोकर ढोकर अपनी गुजर कर लूँगी, किसी की आँख का काटा बनकर नहीं रहूँगी। गुसाई ने किसी प्रकार की मौखिक संवेदना नहीं प्रकट की, केवल सहानुभूति दृष्टि से उसे देखता रहा। दाड़िम के वृक्ष से पीठ टिकाए लक्ष्मा घुटने मोड़कर बैठी थी। गुसाई सोचने लगा, 15-16 साल की किसी की जिंदगी में अंतर लाने के लिए कम नहीं होते। समय का यह अंतराल लक्ष्मा के चेहरे पर भी एक छाप छोड़ गया था, पर उसे लगा उस छाप के नीचे वह आज भी 15 वर्ष की पहले की लक्ष्मा को देख रहा है। कितनी तेज धूप है इस साल, लक्ष्मा का स्वर उसके कान में पड़ा, प्रसंग बदलने के लिए जैसे ही लक्ष्मा ने यह बात जानबूझकर कही हो। और अचानक उसका ध्यान उस ओर गया जहाँ लक्ष्मा बैठी थी। दाड़िम की फैली फैली अंधधकी डालो से छनकर धूप उसके शरीर पर पड़ रही थी। सूरज की एक पतली किरण न जाने कब से लक्ष्मा के माथे पर गिरी हुई एक लट को सुनहरी रंगनी में डुबो रही थी। गुसाई एकटक उसे देखता रहा। दोपहर तो बीत चुकी होगी, लक्ष्मा ने प्रश्न किया तो गुसाई का ध्यान टूटा। हाँ, अब तो 2 बजने वाले होंगे, उसने कहा। उधर धूप लग रही हो तो इधर आ जा छाँव में, कहता हुआ गुसाई एक जम्हाई लेकर अपने स्थान से उठ गया। नहीं, यह ठीक है, कहकर लक्ष्मा ने गुसाई की ओर देखा, लेकिन वह अपनी बात कहने के साथ ही दूसरी ओर देखने लग गया था। घाट में कुछ देर पहले डाला हुआ पिसान समाप्ति पर था। नंबर पर रखे हुए पिसान की जगह उसने जाकर जल्दी जल्दी लचमा का अनाज खप्पर में डाल कर दिया। धीरे धीरे चलकर गुसाई गुल के किनारे तक गया। अपनी अंगुली से भर भर कर उसने पानी पिया और फिर पास ही एक बंजर घाट के अंदर जाकर पीतल और अल्मीनियम के कुछ बर्तन लेकर आग के निकट लौट आया। आसपास पड़ी हुई सूखी लकड़ियों को बटोरकर उसने आग सुलगाई और एक कालिख पुती बटलोई में पानी रखकर जाते जाते लक्ष्मा की ओर कहकर गया, चाय का टाइम भी हो रहा है, पानी उबल रहा है, थोड़ी पत्ती डाल देना, पुड़िया में पड़ी है। लक्ष्मा ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह उसे नदी की ओर जाने वाली पगडंडी पर जाता हुआ देखती रही। सड़क किनारे की दुकान से दूध लेकर लौटते लौटते गुसाई को काफ़ी समय लग गया था। वापस आने पर उसने देखा एक 6-7 वर्ष का बच्चा लक्ष्मा की देह से सटकर बैठा हुआ है। बच्चे का परिचय देने की इच्छा से जैसे लक्ष्मा ने कहा, इस छोकरे को घड़ी भर के लिए भी चैन नहीं मिलता, जाने कैसे पूछता खोजता मेरी जान खाने को यहाँ भी पहुँच गया है। गुसाई ने लक्ष्य किया कि बच्चा बार बार उसकी दृष्टि बचाकर माँ से किसी चीज़ के लिए जिद कर रहा है। एक बार झुंझुला कर लक्ष्मा ने उसे झिड़क दिया, चुप रह, अभी लौट कर घर जाएंगे, इतनी देर में मरा क्यों जा रहा है। चाय के पानी में दूध डालकर गुसाई फिर उसी बंजर घाट में गया। एक थाली में आटा लेकर वह गुल के किनारे बैठा हुआ उसे गूंथने लगा। मिहल में पेड़ की ओर आते उस समय उसने 1-2 बर्तन और ले लिए। लक्ष्मण ने बटलोई में दूध चीनी डालकर चाय तैयार कर दी थी। एक गिलास, एक अनेमल का मग और एक अल्मीनियम के मैस्टिन में गुसाई ने चाय डालकर आपस में बांट ली और पत्थर से बने बेढंगे चूल्हों के पास आकर बैठकर रोटियां बनाने का उपक्रम करने लगा। हाथ का चाय का गिलास जमीन पर टिकाकर लक्ष्मा उठी। आटे की थाली अपनी ओर खिसकाकर उसने स्वयं रोटी पका देने की इच्छा से ऐसे स्वर प्रकट की कि गुसाई न कह सका। वह खड़ा खड़ा उसे रोटी पकाते देखते हुए रहा। गोल गोल डिबिया सरीखी रोटियां चूल्हे में खिलने लगी। वर्षों बाद गुसाई ने ऐसी रोटियां खाई थी जो निश्चित आकार की फौज लंगर में चपातियों या स्वयं उसके हाथों से बनी बिडौल रोटियां एकदम खिन भिन थी। आटे की लोई बनाते समय लक्ष्मा के छोटे छोटे बड़ी तेजी से घूम रहे थे। कलाई में पहने हुए चांदी के बड़े कड़े कभी आपस में टकरा जाते तो कभी खनखन का एक अत्यंत मधुर स्वर निकलता। चक्की के पाट पर टकराने वाली काठ की चिनियों का स्वर कितना नीरस हो सकता है, यह गुसाई ने पहली बार अनुभव किया। किसी काम से वह बंजर घट की ओर गया और बड़ी देर तक खाली बर्तन को उठाता रखता रहा। वह लौट कर आया तो लक्ष्मा रोटी बनाकर बर्तनों को समेट चुकी थी और अब आटे में सने हाथों को धो रही थी। गुसाई ने बच्चे की ओर देखा, वह दोनों हाथों से चाय का मग थामे टकटकी लगाकर गुसाई को देखे जा रहा था। लक्ष्मा ने आग्रह के स्वर में कहा, चाय के साथ खानी हो तो खा लो, फिर ठंडी हो जाएगी। मैं तो अपने टाइम से ही खाऊंगा, यह तो बच्चे के लिए स्पष्ट कहने की झिझक महसूस हो रही थी, जैसे बच्चे के संबंध में चिंतित होने की उसकी चेष्टा अनधिकार हो। नाना जी, अभी तो वह घर से खाकर ही आ रहा है, मैं रोटियां बनाकर रख आई थी, अत्यंत संकोच के साथ लक्ष्मण ने आपत्ति प्रकट कर दी। आह, यूं ही कहती है, कहाँ रखी थी रोटियां घर में, बच्चे ने रुवासी आवाज में वास्तविक स्थिति स्पष्ट कर दी। वह ध्यानपूर्वक अपनी माँ के और इस परिचित व्यक्ति की बातें सुन रहा था और रोटियों को देखकर उसका संयम ढीला पड़ गया था। चुप, आंख तरेर कर लक्ष्मण ने उसे डांट दिया। बच्चे के इस कथन के कारण उसकी स्थिति हास्यपद हो गई थी, इसी कारण लज्जा से उसका मुंह अरक्त हो उठा। बच्चा है, भूख लग गई होगी, डांटने से क्या फ़ायदा। गुसाई ने बच्चे का पक्ष लेकर 2 रोटियां उसकी ओर बढ़ा दी, परंतु माँ की अनुमति के बिना उन्हें स्वीकारने का साहस बच्चे को नहीं हो रहा था। वह ललचाई दृष्टि से कभी रोटियों की ओर कभी माँ की ओर देख रहा था। गुसाई के बार बार आग्रह करने पर भी बच्चा रोटियां लेने का संकोच करता रहा तो लक्ष्मा उसे झिड़क दिया, मर, अब ले क्यों नहीं लेता, जहाँ जाएगा वहीं अपने लक्षण दिखाएगा। इससे पहले कि बच्चा रोना शुरू कर दे, गुसाई ने रोटिया के ऊपर 1 टुकड़ा गुड़ का रखकर बच्चे के हाथ में दे दिया। भरी भरी आंखों से इस अनोखे मित्र को देखकर बच्चा चुपचाप रोटी खाने लगा और गुसाई कौतुकपूर्ण दृष्टि से उसके हिलते हुए होठ को देखता रहा। इस छोटे से प्रसंग के कारण वातावरण में एक तनाव सा आ गया था जिसे गुसाई और लक्ष्मा दोनों ही अनुभव कर रहे थे। स्वयं भी एक रोटी को चाय में डुबोकर खाते खाते गुसाई ने इस तनाव को कम करने की कोशिश की और मुस्कुराकर कहा, लोग ठीक ही कहते हैं, औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है। लक्ष्मा के करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा। गुसाई हो कर खोखली हंसी हंस रहा था। कुछ साग सब्जी होती तो बेचारा एक आधी रोटी और खा लेता। गुसाई ने बच्चे की ओर देखकर अपनी व्यवस्था प्रकट की। ऐसे ही खाने पीने की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग क्यों पड़ता। 2 दिन से घर में तेल नमक नहीं है। आज थोड़े पैसे मिले हैं, आज ले जाऊंगी कुछ सौदा। हाथ से अपनी जेब टटोलते हुए गुसाई ने संकोचपूर्ण में कहा। लक्ष्मा? लक्ष्मा ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। गुसाई ने जेब से एक नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ले काम चलाने के लिए यह रख ले, मेरे पास अभी और हैं। परसों दफ्तर से मनी ऑर्डर आया था। नहीं नहीं जी, काम तो चल ही रहा है, मैं इस मतलब से थोड़ी ही कह रही थी, यह तो बात बात में चली थी तो मैंने कहा, कहकर लक्ष्मा ने सहायता लेने से इनकार कर दिया। गुसाई को लक्ष्मा का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। रुखी आवाज़ में वह बोला, दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है। कितना कमाया कितना फूका हमने इस जिंदगी में, है कोई हिसाब, पर क्या फ़ायदा, किसी के काम तो नहीं आया, इसमें एहसान की क्या बात है, पैसे तो मिट्टी हैं। साला किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी एकदम मिट्टी। परंतु गुसाई के इस तर्क के बावजूद लक्ष्मा अड़ी रही। बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए उसने दार्शनिक गंभीरता से कहा, गंगनाथ दाहिने रहें तो भले बुरे दिन निभ ही जाते हैं, पेट का क्या है, घट के खपर की तरह जितना डालो कम हो जाए। अपने पराये प्रेम से हंस बोल दो तो वह बहुत हैं दिन काटने के लिए। गुसाई ने गौर से लक्ष्मा के मुख की ओर देखा। वर्षों पहले उठे हुए ज्वर और तूफान का वह कोई शेष चिन्ह नहीं था। अब वह सागर जैसे सीमाओं में बंधकर शांत हो चुका था। रुपया लेने के लिए लक्ष्मा से अधिक आग्रह करने का साहस नहीं हुआ, पर गहरे असंतोष के कारण बुझा बुझा से वह धीमी चाल से चलकर वहां से हट गया। सहसा उसकी चाल तेजी हो गई और घट के अंदर जाकर उसने एक बार संकित दृष्टि से बाहर की ओर देखा। लक्ष्मा उस ओर पीठ किए बैठी थी। उसने जल्दी जल्दी अपने निजी आटे के दिन के टीन से 2-2.5 सेट करीब आटा निकालकर लक्ष्मा के आटे में मिला दिया और संतोष की एक सांस लेकर वह हाथ झाड़ता हुआ बाहर आकर बांध की ओर देखने लगा। ऊपर बांध पर किसी को घूमते हुए देखकर उसने हाँक दी, शायद खेत की सिंचाई के लिए कोई पानी तोड़ना चाहता था। बांध की ओर जाने से पहले उसने एक बार लक्ष्मा के निकट गया। पिसान पिस जाने की सूचना देकर उसे वापस लटते हुए फिर ठिठक कर खड़ा हो गया। मन की बात कहने में जैसे झिझक हो रही हो, अटक अटक कर वह बोला, लक्ष्मा? लक्ष्मा ने फिर सिर उठाकर उसकी ओर देखा। गुसाई को चुपचाप अपनी ओर देखते हुए संकोच होने लगा, वह न जाने क्या कहना चाहता है। इस बात की आशंका से उसने मुंह का रंग अचानक फीका होने लगा, पर गुसाई ने झिझकते हुए केवल इतना ही कहा, कभी 4 पैसे जुड़ जाएं तो गंगनाथ का जाकर लगाकर भूल चूक की माफ़ी मांग लेना। पूत परिवार वालों को देवी देवता के कोप से बचा रहना चाहिए। लक्ष्मा की बात सुनने के लिए वह रुका नहीं। पानी तोड़ने वाले खेतिहर से झगड़ा निपटाकर कुछ देर बाद लौटते हुए उसने देखा, सामने पहाड़ की पगडंडी पर सर पर आटा लिए लक्ष्मा अपने बच्चे के साथ धीरे धीरे चली जा रही थी। वह उन्हें पहाड़ी के मोड़ तक पहुंचने तक टकटकी बांधे देखता रहा। घट के अंदर काठ की चिड़ियाँ अभी भी टिकिटकिट आवाज कर रही थी। चक्की का खाट खिसर खिसर चल रहा था और मथाने का पानी काटने की आवाज़ आ रही थी, और कहीं कोई स्वर नहीं। सब सामान निस्तब्ध समाप्त।